الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ومن يعش عن ذكر الرحمن أرجو يعشو يعشو देखें, अब मैंने आपको बताया इसका दो रूट्स बताए. तो आशा या आशु से अगर करेंगे तो मतलब क्या है? एराज करना, गफलत बरतना, तवज्जो ना देना. और अगर आशा या आशी से करेंगे इसका, तो फिर वो जिसकी नजर कमजोर हो गई है, निगाह की कमजोरी के लिए आते हैं, अंधेपन के लिए भी आ जाता है. तो यानी जो, इसीलिए आप देखेंगे कहीं गफलत बरतना भी है और अंधा बनना भी है, दोनों माने लिखे. तो क्योंकि जो बताया गया, जो गफलत बरतता है रहमान के जिक्र से, अब देख रहे हैं आप रहमान का लफ्ज कितना आ रहा है. जिक्र किसका? जिक्र से मतलब पहले देख लेते हैं. जिक्र का मतलब है वैसे अल्लाह का जिक्र करना, जैसे सुबह शाम की दुआएं हैं, नमाज है, या कुरान है, या और अजकार हैं, उठने बैठने सोने जागने की जो दुआएं हैं, ये सारे जिक्र ही है ना. इस कुरान को भी अल्लाह ताला ने अज़्ज़िक्र करा दिया, तो ये भी जिक्र है. ठीक है, तो इसी तरह नसीहत भी, जिक्र को नसीहत के माना भी दिया है कि नसीहत रहमान की, और वो भी कुरान की सूरत में है, या फिर अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो भी, यानी नसीहत की बातें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात. तो मतलब ये है कि जो भी रहमान के जिक्र से, या उसकी याद से, या इस कुरान से, या ये जो नसीहत का पैगाम है, इससे गफलत बरतता है या अंधा रहता है, अंधा बन के रहता है, फिर उसकी सजा क्या है? उसकी कोई सजा भी है? तो कुरान से गफलत तो सारी दुनिया ही बरत रही है. कौन है जो आज कुरान को जानता है? कौन है जो आज कुरान को जिसने समझा हुआ है? अंधे ही बने हुए इससे. अंधा पन्ना समझते हैं ना आप, यानी कुरान है लेकिन बस ऐसे जैसे है ही नहीं है, इसी को नहीं तवज्जो देनी, इससे अंधे बन के रहना, यही होता है ना अंधापन. आपके सामने चीज है, आपको नजर ही नहीं आती, वो तवज्जो ही नहीं इसकी तरफ. तो बात सेम ही हो गई ना, इसे गफलत बरतना, इसे तवज्जो ही ना देना, तो उसकी भी कोई सजा होती है. ये भी कोई जुर्म है? तो पहले ये पूछते हैं, अच्छा ये कोई फर्ज है कि नहीं है? फर्ज नहीं है तो छोड़ो फिर, लेकिन इसकी कोई सजा होती है? इसको, इससे गफलत बरतने की कोई सजा होती है? अल्लाह को याद ना करने की भी कोई सजा होती है? अल्लाह का जिक्र ना करने की भी कोई सजा होती है? कि नमाज छोड़ दी, अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया, या कुरान छोड़ा हुआ है, या ये जो अल्लाह ताला ने नसीहत की इसको तवज्जो ही नहीं है, बस डोंट केयर. आप समझते हैं कोई इसकी सजा होगी? यहाँ पे इसकी सजा बताई गई है. क्या फरमाया? नुकय्यिद लहू शैतानन, हम मुकर्रर कर देते हैं एक शैतान को उसके लिए, फहुवा लहू करीन, तो वो उसका साथी बन जाता है. साथी बन जाता है यानी उसके साथ साथ रहता है बस. फिर सुबह शाम उसका काम क्या है? कि वो इसके साथ रहे. और साथ रह के वो क्या करेगा इसको? आपका क्या ख्याल है, शैतान से आप कोई खैर की उम्मीद कर सकते हैं? जिसका साथी शैतान बन गया, वो फिर उसको किस तरफ को लेकर जाएगा? कोई खैर की बात तो नहीं करेगा, वो तो जहन्नुम की तरफ ही ले जाने वाला है, जो उसने वादा किया था अल्लाह ताला से कि मैं उसको जहन्नुम की तरफ लेकर जाऊंगा. तो एक शैतान क्यों कहा गया? क्योंकि शैतान के जो चेले हैं, उसकी जो हिजब शैतान भी तो है ना, शैतान का भी तो लश्कर है, तो उनमें से एक, उसका प्यादा, उसका एक शैतान जो है, इसके साथ दुनिया में लगा दिया जाता है. जो इसको नेकियों से रोकता है, बुराइयों की तरफ उभारता है, बुराइयों की अट्रैक्शन देता है, बुराई को मुजयन करके दिखाता है, खूबसूरत करके दिखाता है, उसको पुर रौनक और मजेदार और बड़ा फन करके दिखाता है। वह ये किया जाए और आखरत में भी उसका करीन होगा। कैसे? कि जब ये कब्र से उठेगा तो शैतान इसके साथ साथ होगा, यहाँ तक कि दोनों जहन्नुम में साथ एंटर होंगे, इसका हाथ पकड़ के रखेगा जब तक जहन्नुम में ना ले जाए। तो जो फिर यहाँ पे अल्लाह के जिक्र से दूर हुआ, उसका साथी इस तरह से शैतान बन जाता है। कि इतनी बड़ी सजा है जो अल्लाह की याद से या इस कुरान से एराज बरतता है, इतनी बड़ी सजा है। यानी उसकी सोबत, उसकी कंपनी किसकी है? कोई कहेगा कि शैतान की कंपनी हो मेरी? करीन वही है ना, जो साथी है, जो साथ साथ रहता है बस। फराना कहते हैं उस रस्सी को जिससे दो ऊंट बांधे जाए, यहां देख लें, एक दो ऊंट एक ही रस्सी से बंधे हैं, ये साथ साथ हैं। तो जिसकी कंपनी शैतान की हो गई, और वो शैतान इंसानों में से भी हो सकते हैं, जिन्नों में से भी हो सकते हैं, इंसानी शयातीन भी तो होते हैं, तो उसका साथी फिर शैतान बन जाता है। वो नहीं उसको आने देता इस तरफ कि अल्लाह के रास्ते की तरफ। आप देखते हैं, अच्छा वो जिन्नों वाले शैतान तो हमें नजर नहीं आते हैं ना, तो हमें इतना पता ही नहीं चलता, लेकिन इंसानी शैतान तो आपके सामने है। दुनिया में बहुत सारे इंसानी शैतान है जो लोगों को बस जो नेकी काम है उसे डिस्करेज करते रहना, उसके ऊपर मजाक उड़ाना, उसके ऊपर ताने देना, उस चीज को हकीर करके दिखाना, उन लोगों को आउटडेटेड करार देना, जो अल्लाह की बात मानने लग जाए बस, वो तो उसके ऐसे दर्पे हो जाते हैं, ऐसे दुश्मन हो जाते हैं जैसे इनको कुछ कह दिया। अमल दूसरा कर रहे हैं लेकिन वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, इंसानी शैतान। और बुराई के कामों के ऊपर बड़ा इनकरेज करते हैं, वो कोई कर रहा हो तो उसके ऊपर बड़े खुश होते हैं, उसको बड़ा अच्छा कहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो दुनिया में, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसको बहुत इनामात से नवाजते हैं, उसको वो बुराई के काम कर रहा है उसकी बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो ये इंसानी शयातीन भी है और एक जिन्नात में से शयातीन भी है। ऐसे लोगों की सोहबतें फिर शयातीन के साथ ही होती हैं, अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है उस शैतान को। वैसे तो हर एक के साथ ही शैतान लगा हुआ है, एक शैतान आपको पता है ना, हर ईमान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोगों ने पूछा था कि आपके साथ भी कोई शैतान है? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी, लेकिन वो मुसलमान हो गया। तो यानी हर बंदे के साथ एक शैतान लगा, हमारा शैतान हमें उकसाता है, हमारे बस उसे डालता है, तो वो एक शैतान अलग है, और एक ये शैतान है जो हमेशा ही साथ लगा रहता है। ठीक है, और इन्ना हम ला यसुद्दूना अन सबील, और बेशक वो अलबत्ता रोकते हैं उनको रास्ते से। किस रास्ते से? हक के रास्ते से, आपके रास्ते से रोकते हैं वो उनको, सीधे रास्ते पे सिरात मुस्तकीम से रोकते हैं। यानी ये शयातीन ये काम करते हैं, इन उनका बस एजेंडा ही ये होता है, बस इनको इस तरफ ना आने दिया जाए। वह यह सबूना अन्ना हम मुहतदून, और वो लोग क्या समझते हैं, हम तो बड़े हिदायत वाले हैं, हम तो आप हमें क्या समझते हैं, हम कोई बुरे लोग हैं, आपको क्या पता हमारे दिल का, हम तो बिल्कुल सही चलने वाले, हम तो बिल्कुल फैर के उसके ऊपर है, आप अपने आप को बहुत नेक समझते हैं। उनको अगर बताया भी जाए ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत सही काम करते हैं। इसीलिए ऐसे शख्स को अगर आप दीन की भी दावत देते हैं ना, तो वो उल्टा आपके गले पड़ जाता है उसका, क्योंकि साथ उसके शैतान है, वो क्योंकि अल्लाह के जिक्र से दूर रहते हैं ना, तो शैतान उनके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। अब आप उनको बताएं भी तो वो कहते हैं हम आपसे ज्यादा हिदायत हो जाते हैं, आप हमें क्या बताएंगे, हमें ज्यादा पता है। और गुमराहियों में डूबे हुए हराम रास्ते पे चलने वाले, वो भी अपने आप को समझते हैं मैं जी मुझसे ज्यादा नेक कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई भी नहीं। आप उनको कह के देखिए हक की बात, खैर की बात, कहते हैं आपको ज्यादा पता है। यानी वो अपने आप को बहुत हक पे समझती, और चले दूसरों की क्या बात करनी, हम अपने आप को देखें कि हम क्या करते हैं। या हम भी तो नहीं कि अगर हमें कोई खैर की बात बताए, हम कहें हमें तो ज्यादा पता है, आप हमें क्या बताएंगे, आप हमें क्या कहेंगे। अल्लाह के जिक्र से दूर होना इंसान को कितनी बड़ी सजा से दोचार करता है। इसके अंदर जरूरी नहीं कि वो इसका इनकार ही करने वाला हो, बल्कि बस एराज करता है, तवज्जो ही नहीं देता, इस तरफ आना ही नहीं है। इस कितना बड़ा नुकसान है इसका, लाजमी लाजिम कर देना, कैद मुहैया करना, ना तो मुहैया कर देता उसके लिए। तो अब बस साथ 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 सारा वक्त शैतान उसके साथ है, इसी वक्त उसका पीछा छोड़ता ही नहीं, हर वक्त ही उसको हराम की तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, और जो अल्लाह की फरमाबरदारी के काम है उनमें सुस्ती, उनमें गफलत, उनके तरफ तवज्जो ना देना, उनको हकीर समझना, इस तरह करता है, उनको मुश्किल करके दिखाता है, साए की तरह साथ साथ रहता है, अलग ही नहीं होता किसी वक्त, और उसकी कोशिश यही होती है कहीं खैर का कोई काम ना ये कर ले। और देखें आप कि शैतान के हर एक के लिए अलग अलग टैक्टिक्स हैं, उसके मुताबिक, कोई तो कुफर पे है तो उसके लिए इस्लाम पे आना मुश्किल कर देगा, कुफर ही उसको पसंद करा देगा, वो इस्लाम के अंदर है तो आप उसको गुनाहों की अट्रैक्शन देगा और नेकी के काम उसके लिए मुश्किल बनाएगा, कोई नेकी की तरफ भी जरा आ जाता है उसके अंदर खलल डालने की कोशिश करेगा और उसको इसके अंदर सुस्ती कराएगा और उसको दूसरे कामों में इतना इन्वॉल्व कर देगा कि वो उसके लिए खैर के काम के लिए वक्त निकालना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं युआरिद अन ज़िक्री रब्बी यसलुकु अज़ाबन सआदा, ये सूरह जिन में, के जो अल्लाह के जिक्र से राज बरतता है ना, अल्लाह ताला उसको सख्त अजाब में दाखिल फरमाएगा। तो दुनिया में भी देखें ऐसे लोगों के साथ ये शैतान लग जाते हैं और उनको सही रास्ते की तरफ आने नहीं देते, बल्कि इस रास्ते को उनके लिए रुकावटें डालते हैं, मुश्किल बनाते हैं, रोकते हैं। इस रास्ते रोकने के कई तरीके हैं, रोकने का ये भी तरीका है कि वो इतना मुश्किल लगने लगे कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये भी रोकना, रोकना ये भी है। इंसान ये दूसरे कामों में ऐसा इन्वॉल्व कर दिया जाए कि वो इस रास्ते की तरफ आने को अपने लिए मुमकिन ही ना समझ पाए, ये रास्ते पे मैं कैसे आ सकता हूं, मैं तो और चीजों के अंदर इतना मशगूल हूं। अल्लाह का रास्ता उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगे, ये उनकी सजा है जो अल्लाह के जिक्र से ये राज बदल बरतते हैं, ऐसे अंधे बन के रहते हैं। हम सूरह ताहा में पढ़ भी आए हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया उसके अंदर भी जो भी अल्लाह ताला के जिक्र से अंधा रहता है, अल्लाह ताला उसको कयामत के दिन अंधा ही उठाएगा। जो कोई फरमाया उसमें, जो कोई मेरे जिक्र से एराज करेगा तो मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा, माई शतन बन का वहां पे आया, जिंदगी उसकी दुनिया की जिंदगी भी तंग हो जाएगी और कयामत के दिन उसको अंधा उठाऊंगा, यानी दुनिया से चैन सकून इत्मीनान उठ जाएगा, वो डिप्रेस रहेगा बेचैन रहेगा, क्योंकि जो सकून है वो अल्लाह के जिक्र से है। हम सकून के लिए दुनिया की रंगीनियां, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, इस तरह की चीजों के पीछे भागते हैं, इनमें इंटरेस्ट लेते हैं कि मुझे कहीं सकून मिल जाए, मगर जब इंसान इन चीजों के पीछे भागता है तो वो देखता है कि उसके बाद भी सकून नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी रंगीनियां यहां पे रख दी हैं, लेकिन सुकून को अपने पास रख लिया, ताकि अगर इंसान दुनिया में डूब जाए तब भी सुकून लेने के लिए अल्लाह ही की तरफ भागे, वो सुकून उसके पास है, बाकी सारी चीजें ये सारी एंटरटेनमेंट की ये दुनिया में रखी, वो नहीं अल्लाह के पास, अल्लाह ने अपने पास नहीं रखी उनको, दुनिया में रख ली, सुकून अपने पास रखा। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो तुम्हें अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, तब तुम्हें वो सुकून हासिल हो सकता है। तो और वो कैसे अल्लाह के रास्ते से रोकता है, लहवो लहाब में गर्क करवा के, लहवो लहाब में बेकार चीजों में, खेल तमाशों के अंदर, ऐसी चीजों के अंदर डाल के इंसान को अल्लाह के रास्ते से रोकता है। और शराब और जुए के बारे में भी सूरह मायदा में आता है कि उसके जरिए भी शैतान अल्लाह के रास्ते से रोकता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता, जैसे घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, और जब खाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो शैतान फिर कहता है अपने चेलों से कि आज तुम्हारे लिए सोने की भी जगह मिल गई और खाने को भी खाना मिल गया। और जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र कर लेता है, तो कहता है आज एक रात गुजारने की जगह नहीं है और ना शाम का खाना है, जब खाने पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ता है। तो इस तरह शैतान इंसान को मुसलसल गमगीन किए रखता है, इस तरह भी वो अल्लाह के रास्ते से उसको रोकता है, मुसलसल गमगीन, मुसलसल डिप्रेस, मुसलसल नेगेटिव थिंकिंग डाल डाल के। वो अपनी ना थूथनी, इसकी थूथनी ऐसे जैसे खंजीर की होती, वो इंसान के दिल के ऊपर रखता है और फूंके मारता है, वसवसे डालता है। जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है पीछे हट जाता है, ये वसवास खन्नास यही है। तो इमाम इब्ने कय्यम लिखते हैं कि जब इंसान सुबह और शाम करे और उसकी परेशानी सिर्फ एक अल्लाह की जात हो, यानी उसकी परेशानी क्या है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैंने उसके सामने खड़े होना है, आई मैं कैसे हिसाब दूंगा, मेरे अल्लाह की नजर में मैं इस वक्त कैसी हूँ, यानी उसकी सारी परेशानी ना सिर्फ एक अल्लाह की जात बन जाए, तो अल्लाह ताला उसकी सारी जरूरतों को अपने जिम्मे ले लेता है, और फिर वो चीज जो उसे परेशान करे उसको भी अपने जिम्मे ले लेता है, और उसके दिल को अपनी मोहब्बत के लिए और उसकी जुबान को अपने जिक्र के लिए और उसकी आज़ा को अपनी इताअत के लिए लगा देता है। यानी फिर सिर्फ उसको ये फिक्र है कि जब मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाए, उसकी बाकी सारी फिक्रें अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली, अब उन फिक्रों से उसको आजाद करती है। एक ही धुन उसको लगी थी अल्लाह की साथ, उसको राजी करना, उसके लिए भाग दौड़, उसके लिए काम कर रहा है, अल्लाह मेरा खुश हो जाए, मेरे अल्लाह के लिए ये, मेरे बाकी सारी फिक्रें अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता। और ऐसे वाकई लोगों को देखा है मैंने, उनके काम कैसे हो रहे हैं और उनके काम कौन कर देता है और किस तरह से हो जाते हैं, और वाकई अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए होते हैं। ये नहीं कि कोई गैबी चीजें आके उनके काम कर रही थी, लेकिन बस अल्लाह ताला वो भी उनके काम करा देता है, इतने ही आसान हो जाते हैं उनके, जो बाकी लोगों के लिए इतने मुश्किल होते हैं, वो अब खप जाते हैं उन कामों में, इनके काम आसानी से होते जाते हैं। उनकी फिक्र जो है ना, वो एक अल्लाह की जात बन गई है, उसकी जरूरतों को भी अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है, उसकी परेशानियों को भी अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता। और इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि अगर वो सुबह शाम इस हाल में करे कि दुनिया ही उसकी परेशानी है, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी, गम और तकलीफों को उस पर लाद देता है, फिर बस उठते बैठते लेटते वो बस एक ही चीज उसके दिमाग पे सवार, उसे उसके नफ्स के हवाले कर देता है, उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मखलूक की मोहब्बत की तरफ फेर देता है, यानी बस लोगों की मोहब्बत में ही वो लग जाए और बस उन्हीं को खुश करने के लिए उन्हीं के पीछे भागता दौड़ता रहे, और उसकी जुबान को अपने जिक्र से हटा के लोगों के जिक्र की तरफ लगा देता है, यानी जुबान से भी अल्लाह का जिक्र नहीं हो रहा, लोगों की बातें होती जा रही, और उसके आज़ा को अपनी इताअत से हटा के लोगों की खिदमत में लगा देता है, यानी लोगों को खुश करने के लिए वो बस हलकान रहता है। यानी अल्लाह ताला फेर देता है ना, अपने लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं वो कोई काम करता, बस लोगों के लिए काम कर रहा है, और वो ऐसी मुशक्कत उठाता है जैसी जंगली जानवर मुशक्कत उठाते हैं, यानी लगा हुआ है, जानवरों की तरह लगा हुआ है, गधों की तरह काम करता है, ना लोग खुश होते हैं, ना उसकी फिक्रें खत्म होती हैं, ना परेशानियां खत्म होती हैं। अल्लाह अकबर, कितनी ट्रू है ना ये बात। वाकई जब इंसान ये अल्लाह की रजा से ज्यादा लोगों की रजा मकसूद होने लगे, और लोगों के पीछे ही वो भाग रहा है, लोगों के पीछे ही वो अपनी नमाजें छोड़ रहा है, कभी लोगों की खिदमतें करने के लिए वो मैं उसके लिए जा रही हूँ, मैं ये मेहमान नवाजियां कर रही हूँ, मैं फलां चीज कर रही हूँ, उनके पीछे भागता जाता है, अल्लाह ताला बस उसको इन्हीं चीजों के अंदर डाल देता। तो अल्लाह का जिक्र में सुकून का बाइस भी है, अल्लाह के जिक्र के जरिए इंसान अल्लाह की जात से जुड़ा रहता है और शैतान से महफूज रहता है, वरना शैतान उसका करीन बन जाता है। जब इंसान अल्लाह के जिक्र से अरसे तक दूर रहता है और इससे गाफिल रहता है, अंधा रहता है, तो बस शैतान उसका साथी है, फिर उसे कोई खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। और ये सुकून बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। ये दुनिया के मालदारों को, पैसे वालों को भी नहीं मिलती, इतनी बड़ी दौलत है ये सिर्फ अल्लाह के पास। लोग इसके मारे मारे फिरते हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि सुकून हासिल हो रहा है, चाहे कोई शराब भी इसलिए पीते हैं कि सुकून मिल जाए मुझे, मेरे गम दूर हो जाए, गम गलत करने के लिए मैं पीता हूं। तो देखो सुकून फिर भी नहीं उनको मिलता, क्योंकि ये सुकून अल्लाह के पास है। शैतान जिसका करीन हो जाएगा उसको कहां से सुकून मिल सकता है। इसलिए इस जिक्र के साथ जुड़े रहना इंसान की जरूरत है, अल्लाह की जरूरत नहीं है। ये मैं कोई अल्लाह ताला को कोई फेवर दे रही हूँ, कोई एहसान कर रही हूँ, मैं जी बड़ी इधर को आ गई तो पता नहीं कितनी मेरी वजह से दीन को कोई अरूज मिला, नहीं, मैं अपने लिए भला कर रही हूँ। जब इंसान अल्लाह के जिक्र के साथ लग जाता है ना, तो उसका शैतान जो है ना थक जाता है। इसीलिए एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि अपने शैतान को थका दो अल्लाह का जिक्र कर करके, इतना अल्लाह का जिक्र करो कि वो थक जाए, उसको समझ ही ना आए मैं थक गया हूं इस बंदे को हटा हटा के, ये हटता ही नहीं इस रास्ते से, वो थक जाए, इतना आप अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह के जिक्र के बड़े फवायद है। अल्लाह ताला का जिक्र जो इंसान करता है वो उसका दिल आबाद रहता है, और जो जिक्र से दूर रहता है तो वो उसका दिल ऐसे है जैसे मुर्दा हो चुका है। मुर्दा और जिंदा में अल्लाह के नजदीक यही फर्क है। हत्ता इजा जाए अना, हत्ता के जब ऐसा शख्स हमारे पास आएगा, कौन सा वो जिसकी बात हो रही है ना, कि एक वो बंदा है जो अल्लाह के जिक्र भी तवज्जो ही नहीं करता, अंधा बन के रहता है, उसको कोई परवाह ही नहीं है, वो सारी दुनिया की परवाह उसको है, लेकिन जो कुरान है, जो ये नसीहत है, अल्लाह का जिक्र है, जो दिलों की जिंदगी है, इससे दूर रहता है। अब दूर रहते रहते दिल की रोशनी कम होते होते खत्म हो गई, और बस मुस्तकिल अब शैतान उसका दोस्त बन गया। अब इसी तरह जिंदगी गुजारता रहा कि शैतान उसको फिर आने ही नहीं देता था इस रास्ते की तरफ, और वो अपने आप को, देखिए ये कितनी बड़ी कितना बड़ा एक धोखा कह सकते, जो इंसान अपने आप को देता रहता है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हर एक को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद जब इंसान का एंड आता है तब पता चलता है ना, तब आंखें खुलती हैं, ओहो ये तो गलत था जो मैं कर रहा था, मैं कहाँ ठीक था। एंड देन द लास्ट लाफ इज अब शैतान, शैतान की विक्ट्री हो गई ना, फिर लास्ट लाफ शैतान को नहीं देनी। याद रखें कि हम मरने लगे तो उस वक्त शैतान खुश हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। जब तक कि अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा शख्स जो हमारे पास आएगा ना कयामत के दिन, हाल या ले तबीनी व बीने का बादल मशरिकैन, उस वक्त कहेगा फिर, हाय काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब जितनी दूरी होती। अब तो उसको देख भी सकता है उस शैतान को, दुनिया में तो नहीं देख सकता था, तो वसवसे थे। इंसान बुरे काम करके समझता रहता था ना कि मैं सही हूं, अब आंखें जब खुली हैं, अब आगे हलाकत नजर आ रही है, तो अब कहता है हाय काश इसके और मेरे दरमियान तो इतना फासला होता जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान, इतनी दूरी होती, मैं इसको शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उस दिन भी ये कहा कि आज भी नहीं देखना चाहता, और दुनिया में भी काश ऐसा होता।